लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजर। जैसा कि हम अभी तक जानते आए हैं कि अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है। शुरू से हमें, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। और जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं तो उस जर्नल एंट्री की बेसिस पे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। अब सबसे पहले आपको ये मन में ख्याल आता होगा कि हमें लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कि हम लेजर अकाउंट्स को बनाएं। तो सबसे पहले तो लर्नर्स, जैसे कि आप घर पे भी अगर अपना कोई सामान रखते हैं, अपनी स्टेशनरी भी रखते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि जो सिमिलर चीजें हैं आप उनको एक जगह पर एकत्रित करके रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पेन्स हैं, स्केच पेन्स हैं, तो आप उनको एक जगह रखते हैं। जो बुक्स हैं उनको अलग शेल्फ में एक साथ रखते हैं। जो आपकी नोटबुक्स हैं उनको आप अलग रखते हैं। तो ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएं। तो इसी तरह से जब हम जर्नल एंट्रीज भी करते हैं तो उससे अगर हमें पता करना हो कि इस पूरे मंथ में, जिस मंथ की हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं उसमें कितना हमने कैश हमारे पास आया है, कितना कैश हमारे पास से गया है और कितना कैश बचा है, या फिर टोटल सेल्स कितनी हुई हैं पूरे मंथ में, या फिर टोटल परचेजेस कितनी हुई हैं मंथ में, तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें सारी जर्नल एंट्रीज देखनी होंगी, फिर जो कैश, अगर हम कैश कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी कैश आया है उसे एक जगह नोट करना होगा, जो गया है उसे एक जगह नोट करना होगा, और फिर माइनस करके हमें बैलेंस निकालना होगा कि हमारे पास कितना कैश बचा है। इसी तरह से अगर सेल्स हैं तो उसके लिए भी हमें पता करना होगा कि कितनी सेल हुई है, कितनी मंथ में और कितनी बार हुई है, तो तभी हम टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। तो लर्नर्स, लेजर अकाउंट जब हम बना लेते हैं तो उससे हमें उसी टाइम पे क्लियर हो जाता है कि क्या बैलेंसेस जो है वो हैं, टोटल सेल्स इस मंथ में कितने की हुई है, या फिर टोटल परचेजेस कितने की हुई हैं, या फिर कैश का क्या, कितना कैश आया है, कितना गया है। तो लर्नर्स, इसके बाद में जब हम जर्नल एंट्रीज करते भी हैं तो उसके बाद में जब हम अकाउंट्स को बनाते हैं उसके बाद में हम अकाउंट्स को क्लोज भी करते हैं। तो आज के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि लेजर का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और उसको बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है लेजर की, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर होते हैं उनकी हम बात करेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि हम पोस्टिंग क्या होता है और किस तरह से जो लेजर का बैलेंसेस होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम अकाउंट्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन होता है वो रिलेटेड अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर सेल की हम बात करें तो सेल जो है वो एक मंथ में या एक ईयर में कितनी भी बार हुई होगी, लेकिन हम उसको एक अकाउंट के अंडर डाल देते हैं, सेल्स अकाउंट, जिसको हम नाम दे देते हैं, ताकि कि अगर हमें कभी भी पता करना हो कि इस मंथ में या फिर इस ईयर में कितनी सेल हुई है तो हम उसको पता लगा सकें। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट और भी जो अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसा कि हमने जर्नल में आइडेंटिफाई किए होंगे, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, तो इस तरह के अकाउंट्स को हम ओपन करते हैं और उनको एक सेपरेट बुक में हम मेंटेन करते हैं जिसको कि हम लेजर कहते हैं। तो लेजर है क्या, लेजर जो है एक बुक होती है, बुक ऑफ अकाउंट होती है, जिसमें कि हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, उनको हम मेंटेन करते हैं, और ये एक कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट होता है जो लेजर है। जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसका ये कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स होता है। लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर है क्या, लेजर एक बुक है जिसका हार्ड बाउंड बुक होती है, जिसके जो पेजेस होते हैं वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होते हैं, और एक बंडल ऑफ शीट्स के फॉर्म में भी लेजर हो सकता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं थ्रू आउट द ईयर, हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको हम रेलिवेंट अकाउंट्स में लेजर में रखते हैं, और जो जब हम जर्नल से लेजर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पोस्ट कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं, उसको हम पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर भी कहते हैं। उसके बाद लेजर के क्या फीचर्स होते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेजर क्या होता है? लेजर एक अकाउंट बुक होती है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हम जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के, उसे हम पोस्ट कहते हैं। इसको लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं वो जर्नल में एंटर होते हैं या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स में हम उनको एंटर करते हैं, लेकिन फाइनली जो है हम उन्हें लेजर में पोस्ट करते हैं। जो भी हमने ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में जरूर पोस्ट करते हैं। इसीलिए लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। तो लेजर में हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनकी हम मेनली हर वक्त बात करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इन सभी के अकाउंट्स जो है वो हम मेंटेन करते हैं, और ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम रेलिवेंट अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। लेजर जो है एक तरह से हमारे एक अकाउंटिंग सिस्टम के लिए रेफरेंस का भी काम करता है, क्योंकि अगर हम कभी भी चाहें कि हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करके हम उसको रेफर करना चाहें कि उस टाइम पे हमने क्या एंट्री की थी, तो हम पीछे जाकर इसमें हमेशा लेजर को रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लेजर बनाते हैं तो इसके बैलेंसेस जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो उसको बनाने से पहले हमने जो भी चीज हमने करी है, जो भी हमने एंट्रीज करी हैं, चाहे वो जर्नल एंट्रीज हो या फिर वो लेजर बुक में पोस्टिंग हो, तो वो सभी हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करती हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो लेजर अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम हर अकाउंट की तरह ऊपर टाइटल लिखते हैं अकाउंट का। टाइटल लिखने के बाद जो फॉर्मेट होता है वो एक टी शेप अकाउंट की तरह होता है, और जिसमें दो साइड्स होती हैं, जो लेफ्ट साइड होती है हमारी वो डेबिट साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। तो लेफ्ट और राइट साइड लगभग बिल्कुल एक जैसी होती हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे ही हमारा जो सबसे पहला कॉलम होता है वो डेट का होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का होता है, और उसके बाद में हम बहुत छोटा सा कॉलम बनाते हैं जो कि जिसमें हम JF लिखते हैं, जो कि जर्नल फोलियो होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक अमाउंट का कॉलम होता है। तो JF या फिर हमने डेट के कॉलम में हम डेट लिखते हैं। डेट लिखते वक्त हम ईयर को हर बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऊपर एक बार, अगर मान लीजिए हम 2020 अप्रैल के अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम ऊपर एक बार 2020 लिख देंगे, और फिर हम अपने जो डेट्स लिखेंगे वो हम April 1, April 3, April 5 या जिस जिस दिन हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस डेट्स पे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल जब जहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है डेट के पास में, उस पर्टिकुलर्स में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं कि किस नाम से हम उसको डेबिट या फिर क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद जो JF होता है वो जर्नल फोलियो होता है, और जर्नल फोलियो जो है उसका मतलब होता है कि ये जर्नल का पेज नंबर है, मतलब जिस पेज नंबर पे हमने ये जर्नल एंट्री करी है, जिसके बेसिस पे हम इसकी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसको जो है जर्नल के इस पेज से रेफर कर किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी अगर अकाउंट्स को वेरीफाई करना है या क्रॉस चेक करना है रेफरेंस देख कर के लिए, आप हमेशा यहाँ पे पेज नंबर लिखते हैं, जिससे कि हम जो मेन हमारी जो जर्नल बुक है उसको हम रेफर कर सकें। जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे लर्नर्स अपनी आंसर शीट्स में, तो आपको जर्नल फोलियो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक कंप्लीट लेजर की बात नहीं करते, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप जो जर्नल फोलियो का कॉलम है इसको आप खाली छोड़ेंगे। उसके बाद जो लर्नर्स जो अमाउंट का कॉलम होता है उसमें हम लिखते हैं कि जो रेलिवेंट अकाउंट है उसको किस अमाउंट से उसको डेबिट या फिर क्रेडिट किया गया है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा फॉर्मेट है लेजर का वो एकदम जो एक अकाउंट का फॉर्मेट होता है उससे सिमिलर है, जो आप ऑलरेडी जिसके बारे में जान भी चुके हैं। और जब हम अकाउंट लेजर की बात करते हैं तो एक अकाउंट को हम एक पेज एलोकेट कर देते हैं, या फिर जहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उसको हम ज़्यादा पेज भी एलोकेट कर सकते हैं। और जहाँ पे कम ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हम दो तीन अकाउंट को भी एक पेज पे ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादातर उस अकाउंट में पोस्ट करने के लिए कितने होते हैं। सो लर्नर्स, इसके बाद में हमने अकाउंट्स के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जाना। इसके बाद में हम जानेंगे कि लेजर को बनाने की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि हमने कहा कि लेजर एक इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है, इसमें हर तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे, बिजनेस एंटरप्राइज में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हर एक अकाउंट जो है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो एडवांटेजेस क्या है लेजर को बनाने की, आइए ये इसको भी इनको भी देख लें। तो सबसे पहला तो जो नॉलेज, बिजनेस रिजल्ट से जो हमें नॉलेज मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेजर से हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस जो भी हमारे हुए हैं एक ही जगह पे हमें उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम जान सकते हैं कि बिजनेस के रिजल्ट्स क्या हैं, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है और कितना हमारे पास कैश रिमेनिंग है, और जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं उनको हम एक दूसरे के साथ मैच भी कर सकते हैं। उसके अलावा लर्नर्स, लेजर से हमें बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के बारे में भी पता चलता है। तो जो लेजर है वो हर एक एसेट को सेपरेटली रिकॉर्ड करता है, इसलिए आप जो भी एसेट के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंट लेजर्स से मिलती है वो मैनेजमेंट को बजट्स बनाने में हेल्प करती है और एक एक ओवरऑल मैनेजमेंट में विजिल रख पाती है, चेक रख पाती है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैसे वो मैनेज कर रहा है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल पोजीशन है और उसकी भी, उसके बारे में भी हमें पता चलता है लेजर से, क्योंकि लेजर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की। तो इससे हम जो फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और या फिर उसकी जो साउंडनेस है, उसकी जो हेल्थ है, उसको भी हम जज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और पॉइंट है जो इस बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही ग्लांस में हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है कि कितनी टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, टोटल परचेजेस कितनी हुई हैं, कैश कितना बचा है, या और भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन उससे जानना चाहें वो हमें मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लेजर है वो एक एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल रहा है, मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, वो उसके बेसिस पे अपने डिसीजन ऑल्टर कर सकते हैं या ले सकते हैं बजट्स बनाने में और भी चीज़ों में के लिए, और भी मैनेजीरियल लेवल डिसीजंस के लिए। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद लर्नर्स हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लेजर कौन कौन से होते हैं। अगर हम एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर जो उनमें अकाउंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स भी उनमें हो सकते हैं। इसलिए बिजनेसमैन के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इन सब जो ट्रांजैक्शंस हैं या ये जो सब अकाउंट्स हैं इनको एक ही लेजर में मेंटेन कर पाए। तो इसलिए बिजनेसमैन कई बार जो बिग बिजनेस यूनिट्स हैं वो एक से ज्यादा लेजर भी मेंटेन करती हैं। तो ये जो लेजर हैं ये डिफरेंट, जो हमारे हम फाइव पार्ट्स में जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बेसिस पे हम लेजर भी बनाते हैं। जैसे कि हमारा एसेट्स लेजर है, तो एसेट्स लेजर जो है इसमें सारी इंफॉर्मेशन एसेट्स अकाउंट से रिलेटेड आपको मिलेगी, जैसे कि मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, ये सब हमें इससे पता चलता है। उसके अलावा जो लाइबिलिटीज लेजर है उससे जो हमें जो फर्म की डिफरेंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि कैपिटल है, लोन अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। उसके अलावा लर्नर्स जो रेवेन्यू लेजर है इसे जो रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, जैसे कि सेल अकाउंट है, कमीशन हमने अर्न करी है, रेंट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें जो है रेवेन्यू लेजर से मिलती है। इसके बाद एक्सपेंसेस लेजर से जो है हमें डिफरेंट जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कि वेजेस पे किए हैं, रेंट पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर भी हम अलग से बनाते हैं और एक जनरल लेजर बनाते हैं। जनरल लेजर जो है, जो ऊपर हमने जिन जिन लेजर्स की बात करी उसमें से जो कुछ इंक्लूड नहीं हुआ है उसमें, वो हम जनरल लेजर में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि कई बार लैंडलॉर्ड का अकाउंट, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, या आउटस्टैंडिंग रेंट है, इस तरह की जो अकाउंट्स होते हैं इनको हम जनरल लेजर में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद लर्नर्स, अगर हम बात करें कि पोस्टिंग क्या है, हम बात करते हैं कि जब हम जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो जब हम जर्नलाइजिंग कर लेते हैं, मतलब हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में लिखें या फिर उनको पोस्ट करें। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम रेलिवेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, डिफरेंट डेट्स में हम इनको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। तो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पोस्टिंग के लिए, जैसे कि जो दोनों अकाउंट्स हैं डेबिट या क्रेडिट के, उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। दो जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो फर्स्ट आइटम है, जो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आइटम जो है डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो जो आइटम डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड पे हमें वो अमाउंट लिखना होता है उनके लेजर, उस लेजर में, और जो क्रेडिट वाला आइटम है उसका हमें वहां पर नाम देना होता है। इसी तरह से जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है उसमें जो अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, उसका जब हम लेजर बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हम क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे, अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो अमाउंट का नाम हमने डेबिट साइड में दिया है वो हम वहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो लर्नर्स, आप जब इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको सब चीजें इसमें मेंशन करनी होती हैं, जैसे कि डेट लिखनी है, अकाउंट का नाम लिखना है जो डेबिट करना है या जो क्रेडिट करना है, पर्टिकुलर कॉलम्स में इसको हम लिखते हैं, उसके बाद लेजर फोलियो लिखना है, और अमाउंट जो भी डेबिटेड या क्रेडिटेड है वो हमें रेलिवेंट कॉलम में लिखना होता है। सो लर्नर्स, पोस्टिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इससे पहले कि हम जो एक लेजर का फॉर्मेट डिस्कस करें या उसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करें, पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम जो है वो जो पोस्टिंग करते हैं जर्नल से लेजर में, वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना जर्नल का जो पेज है वो खोल लेते हैं, जो उसमें टाइटल दिया होता है डेबिट अकाउंट का। सबसे पहले हम डेबिट अकाउंट से शुरू करेंगे। डेबिट अकाउंट का जो टाइटल दिया होता है, हम देखते हैं कि क्या वो अकाउंट ऑलरेडी लेजर में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम वो पेज खोल लेंगे, और अगर नहीं करता है तो हम उस नाम से एक लेजर अकाउंट एक ब्लैंक पेज पे खोल लेंगे, और उसमें हम एंट्री करेंगे डेबिट साइड पे। वहाँ पे हम मंथ डालेंगे, डेट डालेंगे डेट के कॉलम में, वहाँ पे हम नाम लिखेंगे क्रेडिट अकाउंट का पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और जो अमाउंट होगा उस ट्रांजैक्शन का उसको हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। फिर हम वहाँ पे फोलियो नंबर लिखेंगे लेजर पेज पे, फोलियो कॉलम ऑफ लेजर में, और फिर हम नेक्स्ट एंट्री पर जाएंगे। उसके बाद अगर इसी तरह से हमें क्रेडिट अकाउंट में देखना हो कि उसमें हम किस तरह से करेंगे, तो फिर से हम जर्नल का पेज खोलने के बाद हम जो क्रेडिट अकाउंट है उसका हम टाइटल रीड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो अकाउंट लेजर में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता है तो सिमिलरली वैसे ही हम उसका एक नया अकाउंट खोलेंगे एक ब्लैंक पेज पे, और अगर करता है तो हम उस अकाउंट को खोलेंगे, वहां पे हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे उस अकाउंट के, मंथ डेट डालेंगे, और जो नाम है डेबिट अकाउंट का उसे हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में डालेंगे, और जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसे हम अमाउंट के कॉलम में डालेंगे, और यहाँ पे भी हम फोलियो नंबर लिखेंगे, इस लेजर पेज का जर्नल के फोलियो कॉलम में, और जर्नल में हम लेजर का लिखेंगे और लेजर में हम जर्नल का फोलियो नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एंट्री में जाएंगे। तो ये जो है ये हमारा एक पोस्टिंग का प्रोसेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है अकाउंट को बैलेंस करना, कि किस तरह से हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो जब हम अकाउंट को बैलेंस करने की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य है कि जो दोनों साइड दी हुई हैं, कि जैसे हमने देखा अकाउंट में दोनों साइड होती हैं, डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड होती है और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है उन दोनों का ही हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल जो है हम एक रफ शीट पे कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम दोनों का टोटल कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि किसी एक साइड का टोटल बड़ा आएगा और किसी एक साइड का टोटल छोटा आएगा। तो जो बड़ा टोटल है उसे हम दोनों साइड में लिख देंगे और जो कम टोटल आया है उसे हम उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे। डिफरेंस अमाउंट जो है, अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसी तरह से अगर हमारी जो डेबिट साइड है वो बड़ी है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो हम दूसरी तरफ लिखेंगे। और यहाँ पे हम डिफरेंस जो होगा उसको हम बैलेंस कैरेट डाउन करके लिख देते हैं। और फिर जब ये जो हम कैरेट डाउन करते हैं बैलेंस, ये हम मंथ के एंड डेट पे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम जनवरी के अकाउंट्स बना रहे हैं, जनवरी 31st को जो है हम बैलेंस कैरेट डाउन करके वहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे में जो फरवरी 1 है वहाँ पे हम उसे बैलेंस को ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे कि ये अब हमने बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए हमें ये बैलेंस अवेलेबल है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, जो असेट्स अकाउंट हैं, लाइबिलिटीज कैपिटल अकाउंट्स हैं, और जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। तो जो असेट्स अकाउंट होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और इनका जो टोटल है, इनका जो बैलेंस है वो हमेशा जो है डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरह से जो लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं वो भी बैलेंस्ड होते हैं और इनका जो अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल भी बैलेंस्ड होता है हमेशा और इसका जो है हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, जैसे कि लाइबिलिटीज का रहता है। अगर हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात करें तो ये जो अकाउंट्स हैं ये बैलेंस नहीं होते हैं, बट सिंपली इनको हम टोटल अप कर देते हैं। जो इनका डेबिट टोटल होता है एक्सपेंसेस या लॉस का, ये जो है ये एक्सपेंस या लॉस शो करता है। इसी तरह से जो क्रेडिट टोटल होता है रेवेन्यू और इनकम का, ये इंक्रीज इन इनकम शो करता है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इनका जो टोटल होता है इसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो जो बैलेंस होता है एसेट्स का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन जो टोटल होता है एक्सपेंसेस लॉस रेवेन्यू और इनकम का, इसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इस तरह से हम इन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। अगर जो दोनों साइड है अकाउंट्स की, चाहे वो असेट्स हो, लाइबिलिटीज हो या कैपिटल हो, अगर वो इक्वल हो तो उसका कोई भी बैलेंस नहीं होगा। तो इस अकाउंट को सिंपली हम दोनों तरफ का टोटल करके और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं टोटल वहां पे नीचे लिखकर। तो लर्नर्स इसको हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से जो है हम जर्नल एंट्रीज पहले करते हैं और जर्नल एंट्रीज करने के बाद हम जो है लेजर अकाउंट्स उसमें से बनाते हैं। सो लर्नर्स आप देखें कि जैसे अगर पहला जो ट्रांजैक्शन है, जो भी एक ट्रांजैक्शन हमें दिया गया होगा, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उस जर्नल एंट्री को कैसे लेजर अकाउंट बनाया जाता है, उसकी कैसे पोस्टिंग की जाती है। तो पोस्टिंग देखने के लिए कि लेजर में किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी, आपके लिए जरूरी है कि पहले आप लेजर अकाउंट को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले जो है, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है बिजनेसमैन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सो हम 2020 के अकाउंट्स बना रहे हैं और 1 जनवरी से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी जो एंट्री होगी, क्योंकि बिजनेस जो है वो कैश से शुरू किया गया है, तो कैश हमारे पास में आया है, और जो हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो हमें कहते हैं कि असेट्स में जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट कहते हैं करते हैं, और लायबिलिटीज में जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर इस केस में हम देखें तो हमारा एसेट भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, और हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी आ रहा है। तो लेकिन जब एसेट बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, लेकिन कैपिटल जो है वो हमारी लायबिलिटी है, तो जब कैपिटल बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कैश अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे, और जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। और जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे, नरेशन में एक नरेशन लिखेंगे कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, अमाउंट हमारे पास 50,000 का कैश आया, तो वो 50,000 हम वहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो कैश का भी हम सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जब हमने प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग देखा है तो क्या हमारे पास कैश अकाउंट है, नहीं, क्योंकि अभी अभी तो हमने लेजर बनाना शुरू किया है, हमारे पास तो अभी कोई भी अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट का लेजर में हम कैश अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट भी लेजर में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसका बैलेंस जो है 50,000 है, तो कैश को हमने डेबिट किया है, तो कैश कॉलम में डेबिट साइड में हम 50,000 रुपीज से एंट्री करेंगे, और वहां हम नाम किसका लिखेंगे, कैपिटल का, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट इफेक्टेड अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट है। इसी तरह से जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो जब हम वो अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जब हम कैपिटल को लिखेंगे तो उसको हम वहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट किया है, तो वहां हम क्रेडिट साइड पे 50,000 रुपीज से एंट्री करेंगे, और हम यहाँ नाम किसका लिखेंगे, कैश अकाउंट का, जो कि जो भी दूसरा अकाउंट होगा उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसी तरह से लर्नर्स अगर हम नेक्स्ट एंट्री देखें तो नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है कि कैश पे किया गया और बैंक में पे किया गया। अब क्योंकि कैश बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, और क्योंकि हमने कैश पे किया है इसलिए उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, वो हमारे पास से कम होगा। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही एसेट अकाउंट हैं, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो इसमें बैंक, क्योंकि में पैसा पे किया गया है तो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और कैश अकाउंट कम हो रहा है क्योंकि कैश हमने दिया है तो इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 25,000 रुपीज से ये एंट्री हम कर रहे हैं January 3rd को। सो लर्नर्स अब हम देखेंगे कि जब हम बैंक अकाउंट हमने देखा तो बैंक अकाउंट हमने पहले क्रिएट नहीं किया है, तो बैंक के लिए हमने फटाफट एक अकाउंट बना लिया। उस अकाउंट में हम क्योंकि हमने बैंक को यहाँ पे डेबिट किया है तो उसके डेबिट साइड पे हम 25,000 रुपीज लिखेंगे, और अकाउंट का नाम हम किसका लिखेंगे, हम कैश अकाउंट का नाम लिखेंगे। इसी तरह से जब अब नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है कैश अकाउंट में, लेकिन कैश का अकाउंट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जब हमने पिछली एंट्री करी थी, जब हमने कैश को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था, तो उसी अकाउंट में जाकर अब, क्योंकि तब तो हमने कैश को डेबिट किया था लेकिन अभी जो है हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो अब ये जो एंट्री होगी इसको हम क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम 25,000 January 3 में लिख देंगे, और अकाउंट का नाम हम वहां क्या देंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पैसा जो है हमें बैंक से को दिया है, वो हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद लर्नर्स जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो ये है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, और जो हमने फर्नीचर परचेज किया वो हमने कैश पे परचेज किया है, और 5,000 रुपीज का हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर भी हम देख रहे हैं कि हमारा एसेट अकाउंट है, कैश भी हमारा एसेट अकाउंट है। जब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कैश हमारे पास से जाएगा, कैश कम होगा, तो जब कैश कम हो रहा है, एसेट है कम होगा, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ऐसा हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, फर्नीचर को हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्नीचर भी एक एसेट अकाउंट है और फर्नीचर में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। तो जनवरी 5 को हम ये एंट्री कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें अब हम फिर से देखेंगे, अब इसमें दो इफेक्टेड अकाउंट्स कौन से हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट है और जो दूसरा है वो कैश अकाउंट है। जब हम फर्नीचर अकाउंट को देखते हैं तो ये अकाउंट हमने पहले नहीं खोला है अभी लेजर बनाते वक्त, तो हम फटाफट से एक फर्नीचर का अकाउंट बना लेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ फर्नीचर को डेबिट किया है 5,000 रुपीज से, तो हम फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पे 5,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे और अकाउंट का नाम हम वहां पर कैश अकाउंट देंगे। इसी तरह से जो कैश अकाउंट होगा उसमें हम जो उसकी क्रेडिट साइड है या राइट साइड है उसमें हम 5,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने कैश को क्रेडिट किया है, लेकिन हम वहां पे नाम देंगे फर्नीचर अकाउंट का। तो 5,000 कैश का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि उसमें हम कैपिटल की भी एंट्री कर चुके हैं और इससे पहले बैंक की भी एंट्री कर चुके हैं जो हमने कैश बैंक को पे किया है। इसके बाद हम वहां पे फर्नीचर की भी एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पे क्योंकि फर्नीचर खरीदने के लिए हमने कैश दिया है। उसके बाद लर्नर्स जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जिसकी हम बात करेंगे वो है, एक ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी 8 को जिसमें गुड्स परचेज किए गए हैं और जो पेमेंट है वो चेक से की गई है। तो जो पेमेंट है वो चेक से की गई है। अब आप जब पेमेंट चेक से करेंगे तो आपका मतलब है कि आपका बैंक जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट भी एक असेट अकाउंट है और जब वो कम होगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमने परचेजेस करी हैं तो इसलिए परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो लर्नर, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अगर हम इस केस में देखें तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम इसकी एंट्री जो है वो दो जगह करेंगे, एक तो हम इसकी एंट्री परचेजेस अकाउंट में करेंगे जो हमने ऑलरेडी बनाया भी नहीं है, और एक बार हम इसकी एंट्री बैंक अकाउंट में करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, हम एक फटाफट एक परचेजेस अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम, क्योंकि हमने यहाँ पे परचेजेस को डेबिट किया है इसलिए परचेज की डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखेंगे जो हमने 15,000 रुपीज की परचेजेस करी है जनवरी 8 को, और वहां पे हम अकाउंट का नाम देंगे बैंक अकाउंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो हमारी बैंक अकाउंट के लेजर में होगी, और बैंक का लेजर हम अकाउंट जो है हम लेजर में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं क्योंकि उसमें हमने कैश की एंट्री करी थी जब हमने कैश पे किया था बैंक को, लेकिन अभी हमने जो है पेमेंट चेक से करी है तो इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे परचेज और वहां पे हम 15,000 रुपीज से एंट्री करेंगे। सो लर्नर्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भी हम एंट्री कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, हम जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बेसिस पे जो है हम पहले जर्नल एंट्री कर रहे हैं और फिर उस जर्नल एंट्री को हम पोस्ट कर रहे हैं लेजर अकाउंट में। तो जब हम अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास में डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हो गए हैं कि हमारे पास एक कैश का लेजर अकाउंट हो गया है, हमारे पास कैपिटल का लेजर अकाउंट हो गया है, हमारे पास बैंक का लेजर अकाउंट है, फर्नीचर का लेजर अकाउंट है, परचेजेस का लेजर अकाउंट है, टू डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हमारे पास हो गए। तो इसके बाद जो हमने बात करी थी कि हमें बैलेंसिंग किस तरह से करनी है लेजर अकाउंट की, तो हम एक एग्जाम्पल अगर ले लें किसी भी लेजर अकाउंट का, जैसे कि अगर हम बैंक का एग्जाम्पल ले लें, तो जो हम बैंक का देखते हैं तो उसमें हमने अभी तक दो एंट्री करी हैं, एक तो ये कि जब हमने कैश पे किया था बैंक में 25,000 रुपए, और दूसरा ये जो हमने परचेजेस करी हैं 15,000 रुपए की और पेमेंट हमने इसकी चेक से करी है 15,000 रुपए। तो अगर हम बैंक का अकाउंट देखें तो हम उसमें हमने राइट साइड पे जो क्रेडिट साइड है हमने परचेजेस लिखा हुआ है और जो डेबिट साइड है उसमें हमने कैश अकाउंट लिख के 25,000 रुपए लिखा हुआ है। तो जब हम इस अन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, एक साइड हमारा डेबिट साइड पे 25,000 है, दूसरी साइड हमारा 15,000 है, तो हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। तो एक, क्योंकि एक एक ही एंट्री है तो हमारा टोटल भी यही होगा, एक साइड हमारा टोटल 25,000 है, दूसरी साइड हमारा टोटल 15,000 है। अब हमने नेक्स्ट ये कहा था कि जो बड़ा टोटल है हम उसे लिखेंगे, तो हमने बड़े टोटल को यानी कि 25,000 रुपए को दोनों जगह हमने लिख दिया, लेफ्ट साइड भी हमने 25,000 लिख दिया, राइट साइड भी हमने 25,000 रुपए लिख दिया। जब हमने 25,000 रुपए लिख दिया उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि छोटी हमारी साइड राइट साइड है जो कि क्रेडिट साइड है, वो स्मॉलर साइड है, 15,000 ही उसका टोटल है। तो जो बैलेंसिंग फिगर हम देखें तो कितनी है, वो बैलेंसिंग फिगर है वहां पे 10,000। तो 10,000 रुपीज जो है उसको हम वहां पर January 31 को जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे मंथ एंड में, तो हम वहां पर बैलेंस कैरेट डाउन करके 10,000 रुपीज लिख देंगे। और वही जो बैलेंस होगा जो हमने कैरी डाउन किया है January 31 को, वो 1 फेब को फिर से जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगा या डेबिट साइड पे आ जाएगा, और वहां पे वो एज बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि जो हमारा कैश है उसका जो एक्चुअली जो ज्यादा बैलेंस था वो डेबिट साइड ही था। उसको बैलेंस करने के लिए उस फॉर द टाइम बीइंग हमने जरूर राइट साइड पे या फिर क्रेडिट साइड पे लिखा कि किस तरह से हमें उसे बैलेंस करना है, बट क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था तो वो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट मंथ से होगा तो वो डेबिट साइड पे ही आ जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारे कैपिटल अकाउंट्स होते हैं क्योंकि उनका, या फिर जो लायबिलिटी अकाउंट्स होते हैं क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस करने के लिए मे बी फॉर द टाइम बीइंग हम उसको लेफ्ट साइड पे बैलेंस ब्रॉड कैरेट डाउन करते हैं क्योंकि हमें अकाउंट को क्लोज करना होता है। लेकिन फिर जब हम नेक्स्ट मंथ से उसको बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे तो वो फिर से उसी साइड पे आएगा जिस साइड का वो बैलेंस था। ये चीज आपको लर्नर्स हमेशा याद रखनी होगी। सो लर्नर्स, आज हमने जाना कि लेजर जो है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है लेजर को बनाने का, यूज क्या है लेजर को बनाने का, उसको बनाने से हमें क्या क्या फायदे हैं, और क्या प्रोसेस या फिर स्टेप्स हम फॉलो करते हैं लेजर को बनाने के लिए। सो लर्नर्स, आई फील दैट द लेक्चर वॉज हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। थैंक यू सो मच।